हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें भगवान आत्मज्ञान, या जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग, इसका दर्शन अर्जुन के द्वारा हम सबको दिला रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक आश्चर्यजनक श्लोक लिया था भगवद गीता के दूसरे अध्याय से, आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम। भगवान उस श्लोक में बता रहे थे ये जो आत्मा है कितना आश्चर्यजनक है, कौन कौन सी आश्चर्यजनक चीजें हम आत्मा के द्वारा देख सकते हैं। और इसके द्वारा भगवान अर्जुन को यह समझा रहे थे कि ये आत्मा यदि इतना आश्चर्यजनक है तो इस आत्मा का स्रोत कितना आश्चर्यजनक होगा, और उस आत्मा का स्रोत साक्षात भगवान। तो भगवान ये संकेत दे रहे थे अर्जुन को कि मैं जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक हूं व्यक्ति, वो तुम्हें बता रहा हूं कि युद्ध करो। और हमें आश्चर्य होना चाहिए कि इतना सब कुछ सुनने के पश्चात अर्जुन फिर भी और प्रश्न पूछ रहे थे। तो इस आश्चर्य को हम कैसे सुलझाएं, हमारे लिए पूछ रहे थे। भगवान ने नियुक्त किया था अर्जुन को कि हमारे लिए वो और प्रश्न पूछते रहें, ताकि भगवद गीता का पूर्ण ज्ञान हम अर्जित कर सकें। तो आज का जो श्लोक है ये इस आत्मज्ञान की श्रृंखला का अंतिम श्लोक है, ये 30वां श्लोक। कितने श्लोक हैं दूसरे अध्याय में? 72। 72 श्लोकों में 20 श्लोक भगवान ने केवल आत्मा और शरीर में क्या भिन्नता है इसके लिए डिवोट किए, 20 श्लोक। तो कौन से श्लोक से शुरुआत की थी भगवान ने? उससे एक श्लोक पहले, श्लोक क्रमांक 11, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे। उस श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किया अर्जुन को यह समझाना कि देह और आत्मा में क्या भेद है। और आज का ये अंतिम श्लोक उस श्रृंखला का, आत्मज्ञान की श्रृंखला का ये आज का अंतिम श्लोक, देहि नित्यम अवाद्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम अवाद्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवाद्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो अब तक भगवान अर्जुन के शोक पर संकेत करते हुए बोल रहे हैं, हे भारत, क्यों तुम अब तक शोक कर रहे हो? अरे इतने श्लोक सुनाए, कितने 19 श्लोक हो गए, इतने श्लोक सुनाए कि ये आत्मा को कोई नहीं मार सकता और ये शरीर मरा हुआ है। अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मारने में कोई पाप नहीं। हालांकि देशकाल पात्र के अनुसार ये भगवद गीता का संदेश व्यक्तियों को समझना चाहिए, नहीं तो कई बार भगवद गीता के श्लोक लेकर लोग ऐसा मानना लग जाते हैं कि बस अब भगवद गीता का संदेश है मारो, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं, शरीर मरा हुआ है, तो जो भी अधर्म का पालन कर रहा है बस खत्म करो उसे। जैसे यहां पर भगवान इस श्लोक में कहते हैं, देही नित्य, जो देही है देह के अंदर वो नित्य है, अवाद्य, उसे कोई नहीं मार सकता। अर्थात फिर भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि देही को कोई नहीं मार सकता, देह को तो अवश्य ही कोई मार सकता है, तुम नहीं तो मैं नहीं तो मेरी काल शक्ति, कोई ना कोई इस देह को अवश्य ही मारेगा। तो इस सत्य को जानते हुए अर्जुन, तुम क्यों शोक कर रहे हो? और इतना ही नहीं, भगवान यहां कहते हैं, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जितने सारे जीव भूत हैं जिन्होंने देह धारण किया है, वो सभी एक न एक दिन मारे जाने वाले हैं। तो आज के इस अंतिम श्लोक में आत्मज्ञान के ये विषय रहेंगे हमारे चर्चा के, देह का वास्तविक मालिक कौन है, क्या देही को कोई पीड़ा पहुंचा सकता है, भगवान जब तस्मात् सर्वाणि भूतानि कह रहे हैं तो उसकी क्या व्याख्या है, शोक के कुछ और अन्य उदाहरण, और फिर आज हम अंत में आत्मज्ञान का पुनः संक्षिप्त में दर्शन लेंगे। कौन से श्लोक से? 11वें श्लोक से लेके आज के श्लोक तक एक रिकैप, ओवरव्यू, ताकि हमारी कलयुगी बुद्धि में और स्मरण शक्ति में ध्यान रहे कि हां, भगवान ने इतने श्लोकों में नींव डाली है, ये नींव है, बुनियाद है भगवद गीता को समझने की। तो वो होता है ना, वो बुनियाद या फाउंडेशन जब डालते हैं तो उसमें ज्यादा पानी डालते हैं, ताकि उसके ऊपर इमारत जो खड़ी होने वाली, इसके आगे अब भगवान जो अन्य अध्याय सुनाने वाले हैं उसकी नींव है ये 20 श्लोक। तो यदि हम सबसे पहले ये प्रश्न लें कि देह का वास्तविक मालिक कौन है, ये जो हमारा शरीर है, Who owns this body? कौन इस शरीर का मालिक है? हमारे उपनिषदों में इस प्रश्न के द्वारा इस सिद्धांत को स्थापित किया है कि असली मालिक कौन है। जैसे कि हम जिस वस्त्रों को पहने हुए हैं, यदि हमसे पूछा जाए कि इन वस्त्रों का मालिक कौन है, तो क्या उत्तर देंगे हम? ये जो मैंने कुर्ता पहना है, इस कुर्ते का मालिक कौन है? पहनने वाला मालिक, या जिसने इसे बनाया वो मालिक? दर्जी, बिना दर्जी के मैं कैसे पहनता इसे? तो दर्जी कह सकता है कि भाई मैं मालिक हूं। तो दर्जी को यदि किसान कहे कि वो धागा कहां से उत्पन्न हुआ, जिस धागे को इस्तेमाल कर कर तुमने एक कुर्ता बनाया, वो धागे का उत्पादन तो कहां, रुई से हुआ ना, और वो रुई का उत्पादन मैंने किया। तो जो सीड कंपनी, वो कॉटन सीड कंपनी, वो बोलेंगे कि भाई हमने सीड दिया ना, तो अब किसको देना पड़ेगा एक कुर्ता। तो यदि हमने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के द्वारा यह स्थापित किया कि जो शरीर है वस्त्र के समान, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, तो यदि सबसे पहले यह कहा जाए कि माता पिता का यह शरीर है, तो यह सही उत्तर होगा या गलत उत्तर होगा? यह शरीर माता पिता का है, इट इज ओन्ड बाय अवर पेरेंट्स। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स या असत्य? माध्यम है तो बिल्कुल नहीं है, उनका ओनरशिप बिल्कुल नहीं है, या पार्शियल ओनर है, जॉइंट होल्डर्स, तो पार्शियल ट्रुथ या पार्शियल फॉल्सिटी क्या है इसमें? माता पिता बोले कि भाई, अक्सर होता है ना कि जब बच्चे बात नहीं मानते तो बोलते हैं ना, ज्यादा कर जब वो हरे कृष्णा में आ जाते हैं तो माता पिता ज्यादा बोलते हैं कि अरे तुमको ये शरीर दिया किसने, तुम इतना लेक्चरों में बोलते हो मनुष्य देह मनुष्य देह, इतना दुर्लभ है ये, वो दिया किसने तुम? एक हमारे ब्रह्मचारी के माता पिता, उनका ही प्रवचन सुन रहे थे, उन्हीं का प्रवचन सुन रहे, और उनके प्रवचन में बोल रहे थे दुर्लभ हो मानुष हो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। फिर आए तो ये जो तुम इतना बोले आज कि मनुष्य देह इतना दुर्लभ है, इतने कोटि कोटि जन्मों के बाद ये मनुष्य देह मिलता है, तो तुमको ये दिया किसने? अरे तुम यदि हमारे परिवार में नहीं पैदा हुए होते तो ये मनुष्य देह कैसे मिलता तुम्हें? तो वो कराटे में होता ना, उनके वार उनके ऊपर लगा रहे थे। तो यदि माता पिता ये कहें कि भाई हमारे वजह से तुम्हें ये मनुष्य देह मिला, तो ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि माता पिता, वो बच्चा पूछ ले अब आपको ये देह किसने दिया है कि नहीं, आपको ये देह किसने दिया? श्रील प्रभुपाद एक हिंदी प्रवचन में कह रहे थे कि हम जो इस रूप में हैं, हमारी जो इंद्रियां या जिस आकार में हम हैं, ये हमारा जो आकार है ये हमारे माता पिता का ऐसा आकार, इसलिए हमें ऐसा आकार मिला है, और उन्हें ऐसा आकार मिला क्योंकि उनके माता पिता को ऐसा आकार मिला। तो प्रभुपाद वो डार्विन थियरी का विच्छेदन कर रहे थे कि ये जो डार्विन कहता है कि एक समय था बंदरों से आए हम, याद है पिछले क्लास में हमने वो एग्जाम्पल लिया था, कोई मारुति 800 चला रहा है और 10 साल बाद वो मारुति एस्टीम बन जाता है चलाते चलाते, नहीं होगा ना? तो प्रभुपाद कह रहे थे इस प्रवचन में कि ये जो आकार हमारा है इस मनुष्य शरीर में, जिस आकार में हम हैं, प्रभुपाद कहे ये हमारे बाप के वजह से उनका ऐसा आकार, उनका आकार उनके बाप के वजह से, उनका उनके बाप के वजह से। तो प्रभुपाद कहे सारे बापों को पीछे खींचते जाओ, हम सबके असली बाप हैं कृष्ण। तो इसलिए ये माता पिता का जो क्लेम, हां जैसे कि अभी ये कुर्ता मैंने पहन रखा है, लेकिन ये नित्य रूप से कुर्ता मेरा नहीं रहने वाला, ये पहले किसी और का था, किसी दुकान से जब खरीदा तो दुकानदार का था, अब मेरा, अब ये जब जीर्ण हो जाएगा तो फिर से इन तत्वों में मिल जाएगा और वो तत्व परिणित होंगे किसी और तत्वों में और ये कहीं और पाया जाएगा, फिर कोई और इसका ओनर हो जाएगा। तो यदि फिर कोई कहे कि ये सारे जो तत्व हैं भौतिक प्रकृति, क्या वो मालिक है इस हमारे देह के? ये हमारा शरीर बना किससे? पंच महाभूत और ये जो आठ तत्व हैं उनसे बना हुआ है। तो जो अन्न हम खाते हैं, जो वायु जो हम अंदर सांस ले रहे हैं, तो यदि ये तत्व कहे, भौतिक प्रकृति कहे कि मैं इस देह का मालिक हूं, तो ये भी बात सत्य नहीं, क्योंकि उस भौतिक प्रकृति का भी कोई मालिक है जिसने उस भौतिक प्रकृति को नियुक्त किया है। अब जो 33 करोड़ देवता है वो यदि कहें कि भाई एक शरीर को चलाने के लिए इतने सारे देवता जुटे हुए हैं, हर एक हमारे अंग और हमारे अंग की क्रियाओं के पीछे एक देवता नियुक्त है, हम बोलते हैं, पलक झपकते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हर एक क्रिया के पीछे एक न एक देवता, प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द डेमिगॉड इज रिस्पॉन्सिबल। तो वो कहें कि भाई हम सब मिलके मालिक हैं इस एक देह का, तो वो भी भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि नहीं, वो भी मालिक नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर कितने आत्मा हैं? 1, 2, 3, 4 अनगिनत, कितने आत्मा हैं? एक आत्मा है। हाँ, बहुत सारे हैं ना, जैसे इस कमरे में कितने आत्माएं बैठे हैं अभी, कितने सारे आत्माएं बैठे हैं इस कमरे के अंदर। तो वैसे ही ये जो कमरा इतना बड़ा अपना, ये शरीर, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अंदर हैं, कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इंडिया में तो ज्यादा है, उनकी संख्या इंडिया में ज्यादा है अंदर। तो यदि हमारे पेट के अंदर का वो कीड़ा वो सबको बोले मैं मालिक हूं इस शरीर का, क्योंकि ये जो कुछ खाता है वो डायरेक्टली मुझे मिलता है, मैं वो मालिक, अंदर चिल्ला रहा है जोर जोर से, तो वो उसी के समान है। जैसे कि आपके घर में कोई कॉकरोच यदि वो अनाउंस करने शुरू कर दे कि ये इस घर का मालिक मैं हूं, घर का मालिक कौन है? मैं हूं, क्योंकि मुझसे सब डरते हैं, है ना। जैसे मुझे एक SMS मिला था हाल ही में, उसमें कहा गया था कि कैसे दुनिया गोल है, तो जो कॉकरोच है वो चूहे से डरता है, चूहा जो है बिल्ली से डरता है, वो बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता आदमी से, आदमी पत्नी से और पत्नी कॉकरोच से। तो कॉकरोच यदि घर में कहे कि मैं, सब सोने के बाद फिर हमारा बोलबाला होता है रात को, तो मूर्खता है। तो उसी प्रकार से बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन जो प्रिसाइडिंग डीटी जिसे बोलेंगे इस शरीर के अंदर, वो है हमारा व्यक्तिगत आत्मा। उसके कर्मों के अनुसार वो जो बैक्टीरिया वायरस जो भी जंतु हमारे अंदर हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर में आए, और हमें जो शरीर मिला है वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला। इसलिए भगवान कह रहे हैं देही नित्यम अवाध्योयम, ये देही, इस देह को धारण जो किया है, इसका मालिक है ये देही। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। और ये इनहेरिटेंस में मिला है, जैसे कि कुर्ता ये दिया गया है धरोहर के रूप में। तो परमात्मा जो है वो भी एक है आत्मा हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि केवल हम एक आत्मा और हमारे ऊपर कोई नहीं, बाकी सब छुटपुट आत्माएं हैं। वो जो एक आत्मा व्यक्तिगत उस शरीर के अंदर, उसके ऊपर है परमात्मा हर एक के साथ, इंडिविजुअल वो पैर है आत्मा परमात्मा का। तो यहां पर भगवान ने पहली पंक्ति में इस सत्य को सिद्ध किया। अब क्या उस आत्मा या देही को कोई पीड़ा पहुंचा सकता है? अब तक हमने ये चर्चा की थी कि उस आत्मा को कोई देख भी नहीं सकता, कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो क्या वो आत्मा कभी पीड़ित होता है? कई बार लोग कहते हैं ना उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि अब तक अशांत है ना। तो क्या आत्मा अशांत होता है? क्या आत्मा शांत होता है? मेरी आत्मा को दुख मत दो बोलते ना, मेरी आत्मा को दुख पहुंच रहा है। तो क्या आत्मा को दुख पहुंच सकता है? क्या उत्तर है हमारे विद्वानों का? हाँ कि ना? नहीं? क्यों हाँ? हमारे राहुल भगत प्रभु कह रहे हैं कि हाँ आत्मा को पीड़ा पहुंचती है। हाँ कैसे? लेकिन हमने अभी तो वो श्लोक का पाठ किया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कि आत्मा को किसी शस्त्र से भी काटा नहीं जा सकता, जो कुछ अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तो किस प्रकार की पीड़ा? एक मिनट, कौन बोला? हाँ सही, हिटिंग द बुल्सआई। देह की पीड़ा देह से आसक्ति पर निर्भर है। जितना ज्यादा हम आसक्त रहेंगे इस देह से, और वो आसक्ति आत्मा की नहीं होती, हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो आत्मा की आसक्ति, वो आत्मा देह को अहंकार के द्वारा जब देखता है, जब आत्मा के ऊपर अहंकार का चश्मा पहनाए दिया जाता है, तो उस चश्मे से जब वो देखता है तो उसे वो मेरा देह, ये सब कुछ मेरा। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि शरीर और आत्मा का जो लिंक है, जो चेन जो लिंक कर रहा है, वो है अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी। और वो हर जो भी योनि में हम जाएं, उस योनि में वो उस योनि के अनुसार बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चेन होता है, वो जो बाइंड करता है शरीर और आत्मा को उस आइडेंटिफिकेशन से। और ये जो अहंकार है, ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि कई बार भक्ति में आने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि इसका लोकेशन कहां है और ये कैसे इफेक्ट कर रहा है। इतना सूक्ष्म है ये फॉल्स ईगो, ये आइडेंटिफिकेशन। इसलिए हमें लगता है कि ये मेरे आत्मा का आइडेंटिफिकेशन है, मैं ही हूं ये, ना वो अहंकार का है। जैसे मन, उसे भी सूक्ष्म शरीर कहा गया है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। तो ये अहंकार अब इतना सूक्ष्म है कि मान लीजिए आप अचानक, आपको कभी महसूस होता है कि आज मूड थोड़ा ठीक नहीं है ना, और आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्या हुआ आज। आज 16 माला भी एकदम फुल स्पीड में हो गया, नींद भी नहीं आई, और उसके बाद प्रसादम भी जो मेरे चॉइस का था वो मैंने आज खाया, फिर आज बाकी सब भी टाइम पे उड़ गया था मैं, बाकी सब कुछ ठीक, ये क्या हुआ क्या आज मूड इतना, कुछ तो हुआ है ना? ऐसा कभी होता है ना कि समझ में नहीं आता कि आप उसको लोकेट नहीं कर सकते कि क्या हुआ कहीं पे, फिर आप कुरेद कुरेद के सोचते हो तो फिर हाँ अब ध्यान में आया, मैंने छतरी मांगी थी ना, उसने छतरी नहीं दी। तो देखो मैंने छतरी मांगी किसी से भी, परिवार वाले से, मेरे भाई से या जिससे छतरी मांगी, उसने बोला नहीं देगी, या किसी और डिवोटी नहीं मिलेगी, या ब्रह्मचर्य आश्रम में मैंने तिलक मांगा, बोला तुम्हारा कहाँ है, बस इतनी सी बात। तो इतनी सी बात, और जैसे परिवार में कोई यदि पति कह दे कि आज दूध या चाय जो भी, पत्नी बोले तो बना लो, फिर किचन खुला है, सब कुछ है अंदर। तो अब ये बात हम इसको कहीं डॉक्यूमेंट नहीं करते, किधर नोट डाउन नहीं करते कि आज मेरे साथ किसी ने इस प्रकार से कहा, लेकिन वो जो फॉल्स इगो है वो तुरंत नोट डाउन करता है, और वो दिखाता भी नहीं है, दिखाता नहीं, मूड डाउन कर देता है, फिर वो दिमाग में बात शाम तक रहती है, कुछ कहा था सुबह में। और इसके विपरीत कोई कह दे क्या तिलक है आज आपका, बस दिन भर मूड अच्छा, वो चाहे तिलक मिट गया हो रात तक, मूड अच्छा तिलक है, और समझ में नहीं आता आज मूड इतना अच्छा क्यों। तो अब सोचिए कि यदि इतनी सी घटना में हम इतने प्रभावित हो जाते, तो कल्पना कीजिए कि इस शरीर के साथ उस आत्मा का संपर्क कितने क्षणों तक होता है, कितने हफ्तों महीनों वर्षों तक होता है, अहंकार को बीच में रखते हुए। तो कितने इंसिडेंट्स ऐसे होते, कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके द्वारा ये जो देहात्म बुद्धि है हमारी और गहरी होती जाती है, और गहरी होती जाती है। और ये केवल एक जन्म, ऐसे कितने अनगिनत जन्म, उसको सब मल्टीप्लाई कर उसमें कितने सारे वर्ष, कितनी घटनाएं। तो इसलिए ये उदाहरण प्रभुपाद दिया करते थे कि जैसे, फिर से वो वस्त्र का उदाहरण दिया करते थे कि ये वस्त्र जो है, मुझे यदि ये कुर्ता बहुत अच्छा लगता है और किसी ने ब्लेड मार दिया, इधर कुर्ते पे ब्लेड मार दिया, तो वो ब्लेड कुर्ते को लगा है, मेरे शरीर से कोई खून वून नहीं निकला है, लेकिन वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे मेरे किसी हृदय में खंजर घोप दिया किसी ने, ब्लेड से काटा कुर्ते को लेकिन खंजर लगा हृदय में। कारण क्या है? आसक्ति। तो इसलिए भगवान यहां पर अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा और ऐसे श्लोकों के द्वारा अर्जुन को यह बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो तुम शोक कर रहे हो ना, ये तुम्हारा एक्सटेंडेड बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, विस्तारित देहात्म बुद्धि तुम्हारी, कि यही क्यों। बाकी इसलिए भगवान ने कहा तस्मा सर्वाणी भूतानी, इतने सारे जीव जो मर रहे हैं उसके बारे में तो तुम कभी पूछे नहीं मुझे, इनके बारे में क्यों पूछ रहे हो कि ये मरेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अटैचमेंट, वो ईगो कि ये मेरे हैं, ये मेरे पितामह, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सगे संबंधी, जो भी चाहे कितने भी कुकर्मी हो मेरे हैं ना, तो फॉल्स ईगो, वो आइडेंटिफिकेशन जो इतना डीप रूटेड रहता। तो इसलिए अब भगवान तस्मात सर्वाणी भूतानी ये कह रहे हैं। तस्मात सर्वाणी भूतानी का अर्थ है कि जितने सारे देहधारी हैं, तो सर्वाणी भूतानी का अर्थ है सर्व जीव भूत इस पूरी सृष्टि में। तो अर्जुन को भगवान जब सर्वाणी भूतानी इन दो शब्दों से ज्ञान दे रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं एक है संकुचित विचार और एक है उदार, नैरो व्यू पॉइंट और ब्रॉड व्यू पॉइंट। तो संकुचित विचार क्या है कि ये मेरे, तो भगवान ये अर्जुन को पूछ रहे हैं कि अर्जुन तुमने अपने जीवन में अब तक कितने लोगों को देखा है मरते हुए। भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के अनगिनत, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे तो योद्धा ज्यादा देखते हैं ना, अनगिनत योद्धाओं को देखा है मरते हुए, अनगिनत शरीरों को मरते हुए देखा। तो भगवान ने पूछे और कितनों को देखोगे, तो अर्जुन कहे पता नहीं कितनों को देखूंगा मरते हुए। तो अब भगवान यदि पूछे अब उनकी काउंटिंग बताओ जिनको तुमने नहीं देखा और जो मरे, वो भी बहुत हैं, और जिनको तुम नहीं देखोगे जो आगे मरने वाले हैं, अब वो भी बहुत हैं, तो उनके विषय में तो तुमने कभी शोक किया नहीं। तो केवल ये जो तीन चार जो भी कितने भी कॉम्बिनेशन है पंच महाभूत के खड़े इधर, ये भी तो पंच महाभूत के बने हैं ना, और बाकी जो मरे और मरने वाले हैं वो भी तो उसी तत्वों के बने हैं। जैसे कि हमारे एक अमरीकी प्रचारक को ये प्रश्न पूछा गया था जब 9/11 का क्रैश, वो WTC क्रैश हुआ था 9/11 को अमेरिका में, तो कितने 4,000-5,000 मरे उसमें। तो सब जगह पर टीवी पर और यहां वहां ऐसी हत्या हुई इतने लोगों की, हाँ वो घटना तो बहुत दुखद थी। तो जब इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो काल है वो हर मिनट होता ना कैलकुलेशन कि इतने मिनट में कितने पैदा हुए और इतने मिनट में कितने मर रहे हैं, होता है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन, बर्थ रेट क्या, डेथ रेट क्या। प्रभुपाद को जब पूछा गया, प्रभुपाद ने कहा डेथ रेट इज 100%, सब मरने वाले एक दिन, 100% है डेथ रेट। तो इन्होंने कहा कि वो यदि फिगर लो कि आपने जो प्रश्न पूछा कि ये दो बिल्डिंग में जो 5,000 मरे इसके बारे में इतना सब कुछ चल रहा है सब जगह, लेकिन मैं यदि पूछूं कि ये प्रश्न जो आपने पूछा ये इस एक मिनट में कितने मरे हैं पूरे विश्व में, कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई बुढ़ापे से, अलग अलग तरीके से कितने मरते हैं, उनके बारे में कभी न्यूज आता है, ब्रेकिंग न्यूज 50,00,000 लोग मरे बुढ़ापे की वजह से, नहीं। तो भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा विचार सराहनीय है, यदि वो उदार विचार हो तो। तो इसमें भगवान यह समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम अब इनको बचाकर अपने आप को बहुत उदार विचार वाला मान रहे हो कि मैं देखो कितना कंपैशनेट हूं, कितना मेरे अंदर कृपा अनुकंपा है इनके प्रति कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, है ना। तो भगवान अर्जुन को इसके द्वारा तस्मात सर्वाणी भूतानि के द्वारा यह समझा रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम इनको नहीं मारोगे, दुर्योधन पार्टी को तुम नहीं मारोगे, मान लीजिए तुम छोड़ दिए उसको, मैं भी छोड़ दो इनको नहीं मारते, कॉल ऑफ वॉर कॉल्ड ऑफ, तो तुम्हें क्या लगता है ये बाकी को जीने देगा ये दुर्योधन, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति का अधर्मी ये दुर्योधन, ये कितनों को मारने वाला है ये, और वो जितनों को मारेगा वो सब चिल्ला चिल्ला कर अर्जुन तुम्हें गाली देंगे कि अर्जुन तुम क्यों नहीं मारे जब तुम्हें अवसर मिला था मारने का। तो वो गाली सुननी है। तो यहां पर भगवान एक दूसरा पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि हां यह बात सत्य है कि शास्त्र के अनुसार किसी की हत्या करना पाप है, लेकिन यहां पर यह जो दुर्योधन पार्टी जो पूरा अपना अधर्म फैलाने वाले हैं तो वो फैलाने से पहले इसे मार डालना, जैसे कि श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में पहले ही अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे एक किसान अवांछित पौधों को उखाड़ फेंकता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण किसान के रूप में दुर्योधन जैसे अवांछित लोगों को उखाड़ फेंक रहे हैं इस कुरुक्षेत्र के कृषि क्षेत्र में। तो वो किसान अवांछित पौधों को, वीड्स जिसे कहते हैं, क्यों उखाड़ फेंकता है? क्योंकि यदि नहीं तो पूरी फसल को खा जाएंगे वो। तो उनको उखाड़ फेंकने में किसान भलाई कर रहा है या बुराई कर रहा है? उन फसल की भलाई कर रहा है। तो वही भगवान यहां पर अर्जुन को तस्मात सर्वाणी भूतानी के द्वारा बता रहे हैं। शोक के कुछ अन्य उदाहरण, युधिष्ठिर महाराज, अब तो अर्जुन शोक कर रहे हैं युद्ध के पहले, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने शोक किया। युधिष्ठिर महाराज का शोक यह था कि मैं जब वो राजगद्दी पर बैठ गए, राजगद्दी उनको जब मिली तो उन्हें यह शोक कि केवल मुझे इस राजगद्दी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाने के लिए इतने सारे सैनिकों को मरना पड़ा। महाभारत के स्त्री पर्व में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि मुझे राजगद्दी दिलाने के लिए आप जानते हैं पिताश्री कितने योद्धाओं को मरना पड़ा। तो वो धृतराष्ट्र को ये काउंट बता रहे हैं, 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख योद्धाओं को मरना पड़ा उस पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, 66 करोड़ 20 लाख। इतना काउंट है कि गड़बड़ हो रहा है। इतने योद्धाओं को मरना पड़ा, केवल एक व्यक्ति को राजगद्दी मिले। तो सोचिए यदि हमें कोई राजगद्दी छोड़ दीजिए, कोई नौकरी हमें दिला रहा है और बोले कि आपको ये नौकरी दिलाने के लिए 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोगों को मैंने बर्खास्त किया है, कैसा लगेगा? कलयुग में तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या बात है। एक बार एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे, आप ये सब नौकरी वोकरी छोड़ के ये सब बन गए ब्रह्मचारी इस उम्र में, क्या समाज के लिए क्या कर रहे हैं ऐसे आप करके? कर रहे हैं ना, वैकेंसी कर दिया ना, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतना इंडिया में, वैकेंसी नहीं है। तो एक प्रकार से समाज का सुधार ही कर रहे हैं उसमें। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज का ये शोक, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जैसे किसी कीचड़ के पानी को आप किसी चलनी से साफ नहीं कर सकते, किसी मदिरा के घड़े को आप मदिरा से साफ नहीं कर सकते, उसी प्रकार से मैं जो इस राजगद्दी पर बैठा हूं और मेरे वजह से इतने योद्धाओं का वध हुआ, इसका पश्चाताप कोई नहीं। तो ये युधिष्ठिर महाराज का शोक। इसके पश्चात रामायण में हनुमान जी का शोक बताया गया है कि हनुमान जी जब उन्होंने पूरी लंका को जला दिया और पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो भूल ही गया कि सीता देवी भी हैं उसमें। जोश में आके मैंने पूरी लंका को जला दिया। मैं जिन सीता देवी को बचाने के लिए, रामचंद्र जी का समाचार वहां पर पहुंचाने के लिए, ये सब कुछ जो चल रहा है, सीता देवी को फिर से राम से मिलाने के लिए चल रहा है, और मैंने पूरी लंका को भस्मसात कर दिया। तो हनुमान जी इस प्रकार का शोक कर रहे थे। तो ये जो शोक हनुमान जी का, ये शोक प्रभु श्री राम की सेवा में था, इसलिए इसे भौतिक नहीं कहा गया है। इट इज नॉट मटीरियलिस्टिक बिकॉज इट वॉज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। और तीसरा उदाहरण है महाराज दशरथ, कि इनको भी यही लग रहा था कि मेरे वजह से मेरे पुत्र श्री राम को 14 वर्ष वनवास और उनके साथ पूरी अयोध्या मानो एक स्मशान भूमि बन चुकी थी। तो उस शोक में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इन तीन उदाहरणों से क्या समझ में आ रहा है कि अपने आप को दोषी मान रहे थे हनुमान जी, अपने आप को दोषी मान रहे थे युधिष्ठिर महाराज, अपने आप को दशरथ जी, अपने आप को दोषी मान रहे थे कि इतना सब कुछ हुआ मेरे वजह से। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति प्रारंभ करने से पहले यह सोचना चाहिए, इस प्रकार का शोक आना चाहिए हमारे अंदर भी कि मेरे वजह से भगवान को कितनी तकलीफ हुई। कैसे विचार आएगा, मेरे वजह से भगवान को कितनी तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने इच्छा की कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है, अलग फ्लैट खरीद के दो मुझे। तो भौतिक संसार, देखिए भौतिक संसार को बनाने के पीछे कितना मैनेजमेंट भगवान को करना पड़ा। 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा जी कितना चार चार अपने सर लेकर दिमाग लगाकर, और वो तो केवल ये जो हमारा ब्रह्मांड है जो चार दिशाओं का है, इसलिए ब्रह्मा जी के चार सर हैं। ऐसे कितने ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है जिनमें अनगिनत जीव, उन सब को यहां हम लोग के इंद्रिय भोग के लिए देखो भगवान को क्या कुछ नहीं करना पड़ा। तो क्यों नहीं शोक होना चाहिए हमारे अंदर कि हमारे एक तुच्छ इंद्रिय भोग के लिए हमने इतना बड़ा साम्राज्य मांगा। जैसे जेल, केवल हम मनुष्य यदि कानून का पालन करें तो कितना खर्चा बचेगा सरकार का, है ना। ये जेल, कितने बड़े बड़े जेल हैं और उसमें कितना खर्चा हो रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ जो वहां पे हैं कैदी जो हैं वो कानून का पालन नहीं करना चाहते। मैं अकोला में था कुछ साल पहले, तो वहां पे एक प्रोग्राम था जेल में, जेल के अंदर प्रीचिंग प्रोग्राम, बड़ा सारा जेल था और इतने सारे कैदी, और इतना मैंने देखा, इतना मैनेजमेंट। तो उस समय बंबई से फोन आया था अर्जेंटली, तो हमारे असिस्टेंट को पूछा कि हमको उनसे बात करनी है, कहाँ है, मतलब वो तो जेल गए। बोला जेल गए, बोला आपको मालूम जेल गए, बोला सब ठीक है ना, हाँ नहीं नहीं प्रीचिंग प्रोग्राम के लिए गए, तो उनको मिसकम्युनिकेशन थोड़ा हो। तो वहां पर इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने सारे वो गार्ड, वो वॉचमैन, जेलर और इतने सेल्स, और मैं वही सोच रहा था कि कारण क्या है इसका, क्योंकि ये कानून का पालन नहीं कर रहे। तो उनको पूछो तो भी क्या प्रीचिंग में, क्या उनको कैसे प्रीचिंग करो, क्या पूछो आप कैसे हो ये पूजा कैसे आए ये एक प्रश्न है, कैसे आए। तो ये पूरा भौतिक संसार जिसको एक जेल की तुलना दी गई, इस पूरे भौतिक संसार की रचना भगवान को प्रकृति के साथ, सोचो कितना वो लोग ने मीटिंग की होगी, किसका मैनेजमेंट, कैसा शरीर होना चाहिए, हर एक अलग अलग भौतिक इच्छाओं के अनुसार कैसा शरीर मिलना चाहिए, उसका डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, कितनी उसकी आयु होनी चाहिए, कितना बल होना चाहिए, कितनी स्मरण शक्ति होनी चाहिए, कितना सूक्ष्म शरीर प्रबल होना चाहिए, कितना स्थूल शरीर प्रबल होना चाहिए, कितने सारे ये तत्व इंक्लूड होंगे, कर्म का नियम, कोई इतना कर्म करेगा तो उसको क्या शरीर मिलना चाहिए। यमराज जी वो एक अलग डिपार्टमेंट। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज, हनुमान जी और ये शोक कर रहे हैं हमारे वजह से सब कुछ, तो हमारी भक्ति की शुरुआत उस धारणा से होनी चाहिए कि कम से कम हम अब भगवान को आगे शोक में तो न डालें। ठीक है, एक बार तो डाल दिया, आ गए यहां पर, अब जेल में तो ठीक से रहें, नहीं तो यहां पर भी गड़बड़ घोटाला। और कितने हम, अब देखिए इस भौतिक संसार में या इस जेल में, और ज्यादा इसे हम कठिन बनाने के लिए ये जो आधुनिक जो प्रगति, तथाकथित आधुनिक प्रगति जो कर रहे हैं, ये हम इसे और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इसलिए अब जैसे देखिए जेल का उदाहरण लें कि जेल जो है वो कैदियों के लिए, और जो वहां पर गार्ड, वॉचमैन, पुलिस के जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनको तनख्वाह मिलती है, वो जो कैदी हैं वो गलत काम करते हैं तो उनके गलत काम के ऊपर इनका जीवन चल रहा है, ये भौतिक संसार। कि भौतिक इस संसार में हमने क्या प्रयोजन किया है कि माय लाइवलीहुड इज बेस्ड ऑन समवन एल्सेस क्रूकेडनेस या समवन एल्सेस मिजरी, और बस ये प्रयोजन कर करके इसी संसार में घूमते रहना। तो इसलिए ये शोक बहुत आवश्यक है, इसकी शुरुआत किसकी, भक्ति की शुरुआत इस शोक के द्वारा। तो अब अंत में एक हम भगवान ने जो आत्मज्ञान दिया 20 श्लोकों में, इस आत्मज्ञान का एक ओवरव्यू लेंगे 2.11 से आज का श्लोक 2.30। तो सबसे पहले 2.11 अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे नानु शोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं कि तुम पंडित की तरह, अर्जुन तुम्हारे वाक्य एक पंडित की तरह है, तुम्हारा पांडित्य दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं मूर्ख हो, फूल नंबर वन, प्रभुपाद कहा करते कृष्णा टोल्ड अर्जुन द बिगिनिंग यू आर अ फूल नंबर वन। तो इसमें भर्त्सना की भगवान ने अर्जुन के पांडित्य, दूसरा नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनादिपा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं जो अभी तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं तुम पहले मेरे बारे में जानो कि मैं कौन हूं। तो भगवान स्थापित कर रहे हैं उनकी भगवत्ता इस 12वें श्लोक में। फिर हमने जो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है इस अध्याय का, देहिनोस्मिन यथा देहे, जिसमें भगवान देह कैसे परिवर्तनशील है उसका स्वरूप दिया। अगला श्लोक कौन सा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जिसमें भगवान एक धीर व्यक्ति के क्या गुण हैं और कैसे देह के साथ साथ ये संसार परिवर्तनशील है, इसका स्वरूप दिया। और फिर यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, कि एक व्यक्ति सोमृतत्वायकल, एक मोक्ष को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो अधिकार है कैसे प्राप्त करता है, तो मोक्ष का अधिकारी कौन है इसकी व्याख्या भगवान ने श्लोक में की। और 16 से लेकर 22 इसमें भगवान आत्मा की नित्यता एवं देह की अनित्यता, इन सब श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को यह सुनाया। और फिर भगवान द्वारा आत्मा का विज्ञापन 23 से लेकर 25वें श्लोक तक याद है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, भगवान एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आत्मा के क्या क्या क्वालिटीज हैं, अर्जुन तुम आत्मा के स्तर पर युद्ध लड़ो, देह के स्तर पर नहीं, कि तुम्हारे शस्त्रों से भी ये आत्मा कटने नहीं वाला, ये है वो आत्मा, इसके इसका साक्षात्कार करो। और अंत में 26 से लेके 30 जो आज का श्लोक हमने लिया, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये तुम्हारा जो शोक है ये सब व्यर्थ। और अब इसके पश्चात अगले श्लोक से भगवान स्वधर्म का विचार प्रस्तुत करने वाले हैं कि अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते, आत्मा होने के नाते मैंने तुम्हें समझा दिया, अब एक क्षत्रिय होने के नाते तुम यदि इतने देहात्म बुद्धि में हो तो तुम्हारा एक परिचय क्या है, तुम एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है ये जानो अर्जुन, और उससे कम से कम जानते हुए तो तुम उठो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जोर से, थोड़ा जोर से।
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे मरते गए, तब अर्जुन रोते क्यों थे फिर? अगर वो देह सिर्फ उनको इतना ज्ञान हो गया तो रोने की क्या जरूरत है फिर?
देखिए, वो जो अर्जुन का शोक था वो शोक एक स्वाभाविक, प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हैं कि एक भक्त जो है, ऐसा नहीं कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पत्थर दिल का हो जाता है कि अब चाहे कोई मरे या जिए, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है। नहीं, एक भक्त जो है, अर्जुन एक भक्त है, एक भक्त का हृदय वो भावनाओं से भरा रहता है। लेकिन वो अर्जुन का शोक भगवद गीता सुनने से पहले भौतिक था, और भगवद गीता सुनने के बाद भी अर्जुन ने शोक किया, वो शोक भौतिक नहीं था। इसका प्रमाण ये है कि अर्जुन ने शोक तो किया लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। यहां पर कर्तव्य छोड़ रहे थे अर्जुन, युद्ध नहीं करेंगे, गांडीव छोड़ दिया, कर्तव्य छोड़ रहे थे। लेकिन अभिमन्यु, उनके ही पुत्र अभिमन्यु, और फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो भी कुछ उनके साथ हुआ, एक भक्त होने के नाते उनकी भावनाएं थी उनके प्रति, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य को नहीं त्यागा, इसलिए वो भौतिक नहीं था वो शोक।
हरे कृष्ण, थैंक यू ब्रो। तो आज का जो निचोड़ है देहात्म बुद्धि के वजह से, उससे जो हमारी आसक्ति अटैचमेंट है, उससे हम लोग जो दुख भोगते हैं, तो उस देहात्म बुद्धि को हमने कैसे, उसकी तरफ हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसको कम कैसे करें?
वेडनेसडे क्लास में आके सबसे पहले शुरुआत उसकी है। अर्थात भगवद गीता, जैसे अर्जुन ने हमारे सामने रोल मॉडल कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन उस देहात्म बुद्धि में थे कि ये मेरे पितामह, मेरे गुरु। तो अर्जुन की देहात्म बुद्धि का नाश भगवान ने किया कैसे? भगवत गीता सुनाकर, अर्जुन ने श्रवण किया। जैसे हमने संडे को संडे क्लास में चर्चा की थी कि क्रम से अर्जुन को साक्षात्कार हुआ कैसे। अर्जुन की विषाद अवस्था, फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछे, फिर श्रवण अवस्था, उसके बाद मोहनाश, संदेहनाश, तत्पश्चात स्मृति, पुनः स्मृति स्थापित हो गई कि मैं कृष्ण का दास हूं, न कि मेरे अहंकार का दास, और फिर पूर्ण शरणागति। तो देहात्म बुद्धि से बाहर आने के लिए सबसे पहले हमें श्रवण करना है भगवद गीता का, जैसे अर्जुन ने श्रवण किया, और जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में उस भगवद गीता के उपदेशों को उतारा, वैसे हमें अपने जीवन में उतारना है। और फिर उस देहात्म बुद्धि का नाश भगवान करते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कहते हैं कि उस ज्ञान के दीप से उस अंधकार दूर करते हैं। तो जैसे यदि पूछा जाए कि इस कमरे में यदि अंधकार है तो कैसे दूर किया जाए, दीप को लाकर, तो वैसे ज्ञान के दीप को लाकर। और वो दीप केवल ऐसा नहीं कि वो जलते रहना चाहिए, वो दीप जलते रहना चाहिए। तो यदि अभी जैसे ये बल्ब जल रहा है तो ये बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ बस बाद में बंद कर दो। जैसे कोई लालटेन होता है तो लालटेन की जो लौ है वो लौ जलते रहने के लिए नीचे केरोसिन होना चाहिए। तो वैसे ही हमारी देहात्म बुद्धि को दूर करने के लिए जो ज्ञान दीप है, इसका इसको जलाने के लिए, इस बाती को जलाते रहने के लिए हमें कॉन्स्टेंट एसोसिएशन और प्रैक्टिस, साधना, ये दो चीज आवश्यक है, तब जाके धीरे धीरे वो आसक्ति कम होगी। तो पुनः ये अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे, इस आने वाले रविवार को बंबई से एक और हमारे म्यूजिकल टीम आ रही है, इसका नाम है एनचेंटर्स, हमारे कॉन्ग्रेगेशन डिवोटी के बच्चे हैं और न केवल भक्ति से बल्कि बहुत प्रशिक्षित भी हैं म्यूजिक में, वो प्रेजेंट करेंगे कीर्तन। तो संडे फीस्ट जैसे अनन्यताय प्रभु का हुआ था, उस प्रकार से आने वाले संडे की इवनिंग वो रविवार की शाम हरि के नाम, तो आप लोग सब आइए और भी भक्तों को और आप